और उससे भी खूबसूरत सूरत शुरू हो रही है, सूरत यूसुफ। सूरत हूद नदी के नाम पे थी, सूरत यूसुफ भी नदी के नाम पे है। फर्क सिर्फ इतना है कि सूरत हूद और सूरत यूनुस में बाकी अंबिया के किस्सों के अलावा और भी किस्से थे, जबकि सूरत यूसुफ में सिर्फ किस्सा यूसुफ है। थोड़ी सी बात अगर हम सूरत यूसुफ के मिजाज को समझने के लिए करें, तो पहली बात है कि सूरत यूसुफ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उस दौर में उतरी जब बहुत प्रेशर था, गम का साल, दुख। आपको इतना सताया जा रहा था, इतनी तकलीफें दी जा रही थी कि इसके बाद एक इंसान मजबूर हो जाता है ये सोचने पे कि शायद मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह ने हजरत यूसुफ का किरदार और उनके भाइयों का किरदार अपने प्यारे नबी को दिखाया कि अखवाने यूसुफ ने जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ किया, आपके चचा के बेटे और आपके रिश्तेदार भी आपके साथ कुछ ऐसे ही मामले कर रहे हैं, आप ना घबराइए। एक वक्त आएगा कि आप फतेह मक्का बनकर खड़े होंगे और ये सब आपसे माफियां मांग रहे होंगे। तो सूरत यूसुफ के अंदर अल्लाह के नबी को मक्का की फतह की खुशखबरियां, पूरे गलबे का वादा, इस्लाम की खुशखबरियां और मक्का वालों के पकड़ आने के और अल्लाह के नबी के सामने मतलब दबने वाले हालात की खबरें हैं। और सूरह यूसुफ भी तकरीबन 12 नबी में हिजरत से पहले नाजिल हुई, तरतीब में ये सूरह हूद के बाद नाजिल होती है और यहाँ आपको इसी तरह दिख रही है। और ये वो वक्त था कि अल्लाह के नबी के कत्ल के मनसूबे थे, जो लोग जमा हो चुके थे वो अल्लाह के नबी को ख़त्म करना चाहते थे। और इसमें भी अगर आप देखें तो इससे अगली सूरत रात है जिसमें हक और बातिल का फ़र्क है। आइए थोड़ा सा इसको तर्जमे पे फोकस करते हैं, क्योंकि कल के बारे में भी यही आ रही है, तो कुछ मज़ीद बातें इंशाल्लाह हम वहाँ भी देखेंगे और आज हम जितना भी कर सके आयतों के तर्जमे के साथ चलते हैं। सूरत यूसुफ 12th नंबर सूरा है और इस बारे में इसकी 52 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 1, 1-6, अहसनुल कसस। अलिफ लाम रा हरूफ मुकत्तात हैं। तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। ये रोशन किताब की आयतें हैं। कुरान आपको रोशन ख्याल बनाता है, बी ऑप्टिमिस्टिक। यकीनन हमने इस कुरान को अरबी ज़ुबान में नाजिल फरमाया है कि तुम समझ सको। हम आपके सामने बेहतरीन बयान पेश करते हैं इस वजह से कि हमने आपकी जानिब ये कुरान वही के ज़रिए नाजिल किया है और यकीनन आप इससे पहले बेखबरों में से थे। जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से जिक्र किया कि अब्बा जान, मैंने 11 सितारों को और सूरज चाँद को देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि प्यारे बेटे, अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरे साथ फरेबकारी करें। शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। यानी इसी तरह तेरा परवरदिगार तुझे बरगजीदा करेगा, यानी बाइज्जत करेगा, और तुझे मामला फहमी या ख्वाबों की ताबीर भी सिखाएगा और अपनी नेमत तुझे भरपूर तरीके से अता फरमाएगा। याकूब के घर वालों को भी जैसा कि इसने पहले तेरे दादा और परदादा यानी इब्राहिम और इसहाक को भी भरपूर नेमत दी। यकीनन तेरा रब बहुत बड़े इल्म वाला, जबरदस्त हिकमत वाला है। पहले ही रुकू में फादर सन रिलेशन। आज थोड़ी सी बात भाइयों से करनी है। अक्सर तो लोग कहते हैं ना, आप औरतों को ही कहती रहती हैं, तो क्या करूं, अब आप औरतों को मैं मर्द बना दूं? लेकिन इन आयतों पे मैं मजबूर हूं कि बाप और बेटे का ताल्लुक कैसा होना चाहिए, और आज के मसरूफ बाप और महरूम बच्चे। आज बापों के पास वक्त नहीं है बच्चों के लिए, कमाने में मसरूफ है, मीटिंग्स में मसरूफ है, और उनकी अपनी इतनी मसरूफियात है कि उनको बेटों औलादों से बात करने का वक्त नहीं। और जब बात करेंगे ना, डांट के ही बात करेंगे, पास नहीं बैठते, वक्त ही नहीं उनके। चूँकि चिड़े हुए ना, तो बच्चे भी पास नहीं आते। क्या करना है आपने ऐसी दौलत को, इन्हीं के लिए छोड़ के जानी है बच्चों को वक्त है। अगर 9 to 5 एक मर्द जॉब कर सकता है और अच्छी आसूदगी के साथ उसकी घरदारी चल रही है, तो आप कारोबार में मसरूफ होकर बेतुके वक्त पे काम क्यों करते हैं? हर वक्त फ़ोन पे, और रात सोने की होती है और आप काम कर रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। एक बच्चे से पूछा गया कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, का सेल फोन, फिर मेरे अब्बू मुझे हर जगह साथ रखेंगे। अब्बू वक्त नहीं देते। नहीं, ऐसा ना करो। حضرت یوسف اپنے باپ سے خواب بیان کر رہے ہیں، پتہ کیا چلا کہ بچوں کے خواب ماں باپ کو معلوم ہونے چاہیے. بچے آج الون ہے، لونلی ان کراؤڈ، الون ہے. ہمارے گھروں میں بہت ساری اس وقت دیواریں کھڑی ہیں، ٹینگل کارڈ. ایک لیکچر پچھلے سال یعنی 21 میں جب ادھر ہی آئی تھی نا امریکہ میں، وہ تھا ٹینگل کارڈ، الجھی ہوئی ڈوری ہیں. آج ماں باپ اور بچوں میں وہ ریپو نہیں ہے. باپ زیادہ سے زیادہ کیا ہیں، پیسے کمانے والی مشین. تو لکھیے، فادر از ناٹ این اے ٹی ایم مشین. کڈس آر یور انویسٹمنٹ. ہر ایک کو اپنی انویسٹمنٹ اچھی، گنتے رہتے ادھر پلاٹ لیا ہوا ہے، ادھر گھر لیا ہوا ہے، یہ کرنا ہے، یہ اتنے سال میں اتنے کا ہوگا. تو اگر ایک بچہ بگڑ گیا، آج سے نیت کریں اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کرنے کی. بچوں کو کھلا وقت دیں، نفع تلا. یہ نہیں کہ آپ لائرز والا ٹائم دے رہے ہیں گھڑی دیکھ کر کہ اب ایک گھنٹہ ہو گیا چلو بھاگ جاؤ. نہیں، گھر آئیں تو اس سوچ کے ساتھ آئیں کہ اصل ذمہ داری تو اب سامنے آئی ہے. ہر باپ اپنے ہر بچے کو ایٹ لیسٹ 15-20 منٹ سے آدھا گھنٹہ دے. سنا آج کیا ہوا، فرینڈلی موڈ میں بات کریں. ہم بات بھی پوچھیں نا تو وہ ہوم ورک کی بات کر کے ان کو رلا کے بھیج دیتے ہیں، چلو جاؤ کچھ پیسے دیتے ہیں، جاؤ جا کے کچھ کھا لو. اتنا تھک کر نہ آئیں گھر کہ بچوں کا شور بھی چبھے، کھلنے لگتا ہے. چپ کراؤ ان کو، کیا شور مچایا بھائی انہوں نے. نہیں، صرف ڈانٹ ڈپٹ کا نام تربیت نہیں ہے. ہوم ورک کیا ہے کہ نہیں، یہ تو کوئی اچھا بچہ نہیں تیار ہوگا. اور یاد رکھیے کہ بچپن میں بچوں کے ساتھ وہ محنت اور کوشش کر لیں جو انشاءاللہ آپ کو ان کے جوانی کے صدموں سے بچائیں گی. آج کے اس دور میں اکثر بچے سائیکک ہو چکے ہیں، نفسیاتی گروں کا شکار. یہی حال ماؤں کا بھی ہے، بیٹیوں کا. نہ ماں بیٹی کا تعلق اچھا ہے، نہ باپ بیٹے کا. باہر بڑے اچھے ہیں، آپس میں نہیں. اور ہم نے سیل فون بند کر اپنے بچے کو اگر ٹائم دینا ہے تو بہتر اس کو بچہ سمجھ کر ہی دیں. آج کا ایک بہترین کوٹ لکھانے لگی ہوں، رو کے ٹائم نہیں ہے لیکن رک کے لکھاؤں گی. اٹس ایزیئر ٹو ریز اسٹرانگ چلڈرن دین ٹو فکس بروکن اڈلٹس. بالکل لگتی ہے بات. یہ زیادہ آسان ہے کہ ایک مضبوط بچہ پروان چڑھائیں ایک ٹوٹے ہوئے جوان بچے کو جوڑنے کی نسبت. وہ جب بچے ٹوٹ جاتے پھر وہ خودکشیاں کرتے، پھر ڈپریشن میں چلے جاتے، پھر گھر چھوڑ جاتے، پھر اسلام چھوڑ جاتے، پھر ہمیں ہوش آتا. اور الف لام را تلک آیات الکتاب المبین سے کیا پتہ چلا؟ قرآن انسان کو براڈ مائنڈیڈ بناتا ہے، روشن خیال. سب سے زیادہ روشن مزاج دین والے ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کی غلطی نے لوگوں کو اس کا الٹ سوچنے پہ مجبور کر دیا. کیا آج لوگ دینداروں کو بیکورڈ سمجھتے ہیں؟ قرآن سے زیادہ کوئی آپ کو روشن خیال نہیں بناتا. پھر اس میں خوابوں کی بات تھی. تین قسم کے خواب ہیں، من اللہ، من النفس اور من الشیطان. اس کے اوپر زیادہ سننا ہو تو جا کر آپ انہیں کی تفسیر سنیے، بہت دفعہ سورہ یوسف الگ بھی ہوئی ہوئی ہے ماشاءاللہ. اور کسی کی بھی سن لیں، انگلش اردو میں سن لیں، جو دل چاہے. فیتھ ان ایکشن، ہر کسی سے اپنا خواب بیان نہیں کرنا، اپنی نعمتوں کا بڑھا چڑھا کر اظہار نہیں کرنا. اب یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے، آیت 7 سے 20. بھائیوں کا حسد، رکو نمبر 2. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہماری نسبت باپ کو زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں. کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا شریف گمراہی میں. تین پوائنٹس اس میں بدتمیزی کے، باپ پہ شک کر رہے ہیں اور اپنے بڑے ہونے کو کہہ رہے ہیں بھی تم بہت ہو تو کیا ہوا. ہاں، یعنی اکثر بچے ویسے اس غلطی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم سے تو پیار کرتے ہی نہیں. یوسف کو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پر پھینک دو. دیکھیے کیسے نیگیٹو مائنڈ ہے ان کے، کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے. یہ بھی غلط تھا، باپ کی توجہ نہیں چاہتے تھے، صرف حسد تھا. اس کے بعد تم نیک ہو جانا، یہ بھی آج کا جرم ہے کہ پہلے گناہ کر لو پھر توبہ کر لیں گے. ان میں سے ایک نے کہا، بیچ والا تھا یہ، یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہہ میں ڈالو، کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا کر لے جائے. اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یوں ہی کرو. یہ کہنے کے بجائے یہ کہہ دیتا کہ ابا یہ دیکھو بھائی کو قتل کر رہے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. انہوں نے کہا، ابا آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ یہ دیکھیے جس کو آپ کہتے ہیں اوفینسو اسٹائل، باپ پہ چڑھائی کر رہے ہیں، اگریسو ہو رہے ہیں. ہم تو اس کے خیر خواہ، قتل کے ارادے ہیں اور کہہ رہے ہیں وی آر ویری ویل وشر، अक्सर रिश्तों में यही होता है। कल आप इसे ज़रूर हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब खाए पिए और खेले, इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। कत्ल के इरादे और कह रहे हैं हम हिफाजत के जिम्मेदार हैं, कॉल और फेल का तजार। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अब ज़रा बाप का जवाब सुनिए, आखिर यूसुफ के बारे में हम पर आप एतबार क्यों नहीं करते? याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, इसे तुम्हारा ले जाना मुझे तो सख्त सदमा देगा और मुझे ये भी खटका लगा रहेगा कि तुम्हारी गफलत में से भेड़िया खा जाए। यही जुमला उन्होंने बाद में इस्तेमाल किया। कभी बच्चों को ऐसा कोई वीक पॉइंट ना दें कि कल वो कि अम्मा आपने पहले ही कह दिया था ऐसा होगा तो हो गया। उन्होंने जवाब दिया कि हम जैसी जोरावर जमात की मौजूदगी में भी अगर इसे भेड़िया खा जाए तो हम तो बिल्कुल ही नकम्मे ही हुए। यानी इससे पता चलता है कि एटीट्यूड प्रॉब्लम था इन भाइयों में और खुद पसंद है। फिर जब उसे ले चले और सब ने मिल ठान लिया कि इसे गैर आबाद गहरे कुएं की तह में फेंक दें, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह वही की कि यकीनन वक्त आ रहा है कि तू इन्हें इस माजरे की खबर इस हाल में देगा कि हम जानते ही ना होंगे। और ईशा के वक्त वो सब अपने बाप के पास रोते हुए पहुंचे, छूटे आंसू तस्वे बहारे और कहने लगे, अब्बा जान हम तो आपस में दौड़ में लग गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमने सामान के पास छोड़ा, बस इसे भेड़िया खा गया। पूरे यूसुफ को निगल गया भेड़िया। इज इट पॉसिबल? छूट के पाँव नहीं होते। आप तो हमारी बात न मानेंगे गो हम बिल्कुल ही सच्चे हों, और यूसुफ के कुर्ते को झूठ मूठ के खून आलूद भी कर लाए। बाप ने कहा, यूं नहीं बल्कि तुमने अपने दिल ही से एक बात बना ली है, बस सब्र ही बेहतर है और तुम्हारी बनाई हुई बातों पर अल्लाह ही से मदद की तलब है। और एक काफिला आया और उन्होंने अपने पानी लाने वाले को भेजा, इसने अपना डोल लटका दिया, कहने लगा, वाह वाह बात खुशी की बात है, ये तो एक लड़का है। उन्होंने इसे माले तिजारत करार देकर छुपा लिया और अल्लाह ताला इससे बाखबर था जो वो कर रहे थे, और उन्होंने इसे बहुत ही हल्की कीमत पर गिनती के चंद दिरहमों पर बेच डाला। वो तो यूसुफ के बारे में बहुत ही बेरहमत थे। इतना कीमती यूसुफ जिसको अल्लाह ने इतना अच्छा ख्वाब दिखाया हुआ था, वो यूसुफ जो कल मिस्र का वजीर खजाना बनने वाला था चंद टकों में बिक गया। इंसान की ज़िंदगी में ऐसे वक्त आते हैं, ये अरूज की सीढ़ियाँ होती हैं आजमाइशें। कोई आपकी कदर नहीं करता, क्यों? ताकि कोई दूसरा आपको कदरदान मिल जाए और वो आपकी कदर कर ले। तो इसमें बेटों का बाप के साथ जारहाना अंदाज है, यानी अग्रेसिव भी हैं और ओफेंसिव भी हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं बाप को बार बार। जैसे आज भी बच्चे कहते हैं ना, आप तो मुझे सेलफोन ले कर नहीं देंगी, आपको मुझ पर शक है ना, मैं पता नहीं क्या देखूँगी। तो इसको कहते हैं दाल में कुछ काला है। भाई की गलती क्या थी? बीच वाले ने क्या कहा, इसको कत्ल ना करो कुएं में फेंक दो, बाकी ने कहा ठीक है। उसकी गलती क्या थी कि वो कहता कि कुएं में भी ना फेंको और फौरन जाकर बाप को बताता, अब बाबा देखो ये भाई के कत्ल के इरादे कर रहे हैं, तो क्या ये चुगली होती? नहीं, बच्चों में कोई एक बच्चा ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जो माँ बाप को आके बताए, अम्मी भैया फिल्म देख रहा है, वो देखो बाजी क्या कर रही है, वो सेलफोन पर कुछ और देख रही थी, मैंने खुद देखा था। अब वो चुगल फोर जो टिटैन ऐसे छोटे से होते हैं वो किसी को अच्छे नहीं लगते। वही बच्चे जिनको खुद ही दुआओं से मांगा होता है ना, मुझे बहन चाहिए बहन चाहिए, बहन आ गई तो वो उसको अच्छी नहीं लगती, वो कहती है मेरी सहेलियों में आके बैठ जाती है, फिर मेरी बातें सुनती है। तो उसको क्या चाहिए था? बड़े गुनाह से बचने के लिए छोटे गुनाह की नहीं नेकी की दावत देनी चाहिए। गलती थी उसकी, मगफरत को हक समझ कर गुनाह किया, कहते बाद में माफ़ी मांग लेंगे, ये किसी इंसान की ना समझिए। नफ़रतें देकर मोहब्बतें नहीं मिला करती, किसी की मोहब्बत आप छीनेंगे तो मोहब्बत आपको भी नहीं मिलेगी। और ये गलती बहुत सी बच्चियाँ शादी के बाद अपने शौहर और अपने ससुराल के मामले में करती हैं कि अम्मा के पास क्यों बैठा, ये बहनों से बातें क्यों करता है, मुझे अलग कर दो। क्यों भाई, आप बीवी तो बन चुकी हैं और क्या बनेंगी? तो ये जुमला दिल पे लिख लें कि आप जितनी इन लॉज को इज्जत और मोहब्बत देंगी शोहर आपसे उतना प्यार करेंगे। फसबरुन जमील, गिले शिकवे से पाक सबर, ला शिकवा तफीहा। किसी पर मुसीबत का इजहार ना करना, सिर्फ तवक्कुल करना अल्लाह पे। हम क्या कहते हैं, रोते हैं धोते हैं, उसको सुना, अम्मा को फ़ोन कर, दोस्त को फ़ोन कर, उसको कर, फिर गला रोंदे जाता, फिर कहते हैं सब्र करते हैं। पूरी सूरत आप पढ़ने वाले हैं अभी, हज़रत यूसुफ की शक्ल जमील का कहीं जिक्र नहीं आना, सिर्फ सब्र जमील है। यूसुफ के ख्वाब ने याकूब को सब्र दिया। यूसुफ का ख्वाब हज़रत याकूब को तसल्ली दे रहा था कि यूसुफ को कुछ नहीं होगा, एक दिन इसके सामने सब झुकेंगे। इसी तरह अल्लाह औलादों के गम देने से पहले दिल पे मरहम डालता है। एक माँ का जुमला मुझे याद आ रहा है, बेटा दीन छोड़ रहा है, चला गया, और माँ कहती है मैं जिंदा कैसे हूँ, इतना बड़ा सदमा मैंने बर्दाश्त कैसे किया होगा। अल्लाह फिर दिल पे फाखा भी रखता है। किसी ने एक बड़ा सा एक अजीब सा शेर कहा, ऐसे ही रिलैक्सिंगली, होती जो वफा रिश्तेदारों में, न बिकते यूसुफ मिस्र के बाजारों में। अरबी का एक मुहावरा है, अल अकारिबु कल एकारिबु, दो रिश्तेदार बिच्छू की तरह होते हैं, यानी वो बिच्छू की तरह डसते हैं, अरबी का एक कहावत है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी औलादों की हिफाजत फरमा, जैसे यूसुफ की कुएं में और मूसा की फिरौन के महल में की। फेथ इन एक्शन, वालदैन का अदब और लिहाज हर हाल में करना, किसी के खिलाफ साजिश नहीं करनी, किसी की नेमत से हसद नहीं करना। रुकू नंबर 3, 21 से 29, 21 to 29, यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, यानी अप्स एंड डाउन्स। वकाल अल्लज़िश्तराहु मिन मिस्र, मिस्र वालों में से जिसने इसे ख़रीदा था, इसने अपनी बीवी से कहा कि इसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखो, बहुत मुमकिन है कि ये हमें फ़ायदा पहुँचाए या इसे हम अपना बेटा ही बना लें। यूँ हमने मिस्र की ज़मीन पर यूसुफ का कदम जमा दिया। शुक्रिया कहिए ऐसे भाइयों को जिसने कत्ल के इरादे से कुएं में डाला, वो कुआं यूसुफ की तरक्की का जीना बन गया। इसी तरह आपको वो लोग प्यारे लगते हैं जो आपको दुख देते हैं, क्योंकि उनके बाद ही तो आपको खुशियाँ मिलती हैं। कि जब इसे ख्वाब की ताबीर का कुछ इल्म सिखा दें, अल्लाह अपने इरादे पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग बेइल्म होते हैं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पुख्तगी की उम्र को पहुँच गए, हमने उसे कुव्वत फैसला और इल्म दिया। हम नेकूकारों को इसी तरह बदला देते हैं। अब यूसुफ की ज़िंदगी का एक और दौर, पहले बाप की मोहब्बत में थे तो कुएं में डाल दिए गए, फिर कुओं से निकाल कर अब एक और अरूज, यानी अप्स एंड डाउन, वो जैसे ग्राफ। अब यूसुफ का एक और दौर है, अजीज मिस्र ने ख़रीदा, अपने घर ले गया, वहाँ बीवी थी उसकी। इस औरत ने जिसके घर में यूसुफ थे, यूसुफ को बहलाना फुसलाना शुरू किया कि वह अपने नफ्स की निगरानी छोड़ दे, और दरवाज़ा बंद करके कहने लगी, लो आ जाओ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो मेरा रब है, मुझे इसने बड़ी अच्छी तरह से रखा है, बेइंसाफी करने वालों का भला नहीं होता। या वो ईमान की ताकत का सबक जो शुरू में दे दिया, याद कर ले मरसद वाला वाकया, ये ईमान की ताकत है जो यूसुफ को रोक रही है। इस औरत ने यूसुफ की तरफ का कसद किया, और यूसुफ इसका इरादा कर लेते अगर वो अपने परवरदिगार की दलील ना देखते। यूं ही हुआ कि हम इससे बुराई और बेहयाई दूर करें, बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से था। दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े, कैसे, यूसुफ जान बचाते हुए और औरत उससे बुराई के इरादे से, दौड़े की तरफ थी लेकिन मकसद दोनों का फर्क। इस औरत ने यूसुफ का कुर्ता पीछे की तरफ से खींच कर फाड़ डाला, और दरवाजे के पास इसका शौहर दोनों को मिल गया, तो कहने लगी, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे, बस इसकी सजा यही है कि इसे कैद कर दिया जाए या कोई और दर्दनाक सजा दी जाए। ये है लस्ट। कई बच्चियाँ जवानी में मोहब्बत और लस्ट का फ़र्क नहीं जानती, और कई लड़के भी नहीं जानते कि वो इसे बड़ा पसंद करती है, प्यार करती है। अभी मोहब्बत दे रही है, अपने आप को पेश कर रही है, और आप देखे चुगली लगा रही है, मियाँ को देख कर नजरें बदल गई। वही मरसद और उनाक की स्टोरी इधर आप याद कर लें। यूसुफ ने कहा, ये औरत ही मुझे फिसला रही थी, इसे पता चलता है आप सच में हैं तो दलील दें, खामोश नहीं रहना चाहिए जबकि आपके पास सबूत हो। और औरत के कबीले ही के एक शख्स ने गवाही दी कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठ बोलने वालों में से है, और अगर इसका कुर्ता पीछे की जानिब से फाड़ा गया तो औरत झूठी और यूसुफ सच्चों में से है। खामन ने जो देखा कि यूसुफ का कुर्ता पीठ की तरफ से फाड़ा गया, यानी उन्होंने अपना दिफा किया और औरत ने पीछे से कपड़ा पकड़ा तो फट गया, तो कह दिया, साफ कि औरतों की चालबाजी है, बेशक तुम्हारी चालबाजी बहुत बड़ी है यूसुफ, अब इस बात को आती जाती करो। यानी अब क्या करें, सो के ली भी, यानी जिना का इरादा नहीं किया बीवी ने, जैसे एक ग्लास तोड़ा है, जाओ जाओ सो के, और औरत तो अपने गुनाह से तौबा कर, बेशक तू गुनाहगारों में से है। या नोट कीजिएगा, इसको दयूसियत का है हदीस में, कि एक मर्द अपनी बीवी में बुराई देखे और फिर कही सो के, लिबरलिज्म है, आई एम वेरी लिबरल हस्बैंड, आई एम अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड, जाओ शाबाश। यहाँ बहुत कुछ कहा जा सकता है। उस दौर के मर्द और आज के हालात को सामने रखें, तो आज दोनों तरफ हालात ऐसे हैं, आगे जाके इस पर बात होनी है। चंद जुमले लिखिए, भाइयों के मुकाबले में भी यूसुफ ने सब्र किया, पर क्या करते, मजबूरी थी, ना करते तो क्या करते। ऐसे सब्र को इस्तरारी कहते हैं, बाय फोर्स वी हैव टू, बाय हुक और बाय क्रुक। लेकिन ये जो इमरातुल अजीज के मुकाबले में सब्र है, ये बड़ा मुश्किल है, इट्स बाय चॉइस, और ये सिर्फ वही करता है जिसका ईमान मजबूत है। कुरान ने दुनिया की पाकीज़ा तरीन औरत का भी तस्करा किया, मरियम अलैहिस्सलाम, पढ़ चुके हैं और आगे सूरह मरियम में भी पढ़ेंगे, और इसके ऑपोजिट इमरातुल अजीज का भी, वो जो है वो आप खुद पढ़ रहे हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। यूसुफ और अजीज मिस्र की बीवी के बारे में एक जुमला ले लें, मोमिन गुनाह से और फाजिर गुनाह की तरफ भागता है, दोनों के भागने को ज़हन में ले आइए। अजीज मिस्र का किरदार इधर दयूसियत का है, अगर बदरीबू हुन्ना की वो आए जो आज बड़े गैर मुस्लिमों को खटकती है ना इस्लाम की, इस पे अमल कर लेता तो बीवी सीधी हो जाती और बुराई घर में ही रहती, और उससे ज़्यादा वो चांदना चढ़ाती जो अगली आयतों में हम पढ़ने वाले हैं। कुछ लोगों ने कहा, जो भी है छोड़िए, कि ये निगलेक्टेड वाइफ थी, अजीज़ मिस्र इसको तवज्जो नहीं देता था। या फिर ब्रदर्स की बात करूँगी, शौहरों को अपनी बीवियों की जज्बाती तस्कीन का ख्याल रखना चाहिए। शादी के शुरू के दिनों के अलावा बाद में अमूमन हमारे कल्चर में शौहर बीवी का ताल्लुक ऐसा ही बन जाता है जैसे हमारी पाकिस्तानी इंडियन फिल्मों में शादी के बाद फिल्म ख़त्म हो जाती है, देर इज़ नो रोमांस आफ्टर मैरिज, जैसे देर इज़ नो लाइफ आफ्टर डेथ। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अपनी बीवियों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। बस कहते हैं कि क्यों उसने यूसुफ पे डोरे डाले, अगर मर्द उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी करता तो शायद उसको ना होता। देखिए कुछ को तो आदत होती है, उनको तो छोड़ दें, कुछ मर्द भी ऐसे ही होते हैं जिसको ठरकी कहते हैं, कुछ औरतें भी ऐसी होंगी, लेकिन आम तौर पे मर्दों को बीवियों का ख्याल रखना चाहिए। मर्दों में इमोशनल पार्ट थोड़ा सा वीक होता है, औरत की याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है, ख़ास तौर पर इस बारे में कि डू यू लव मी, बेगम तुम्हें कहा नहीं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर अगले महीने पूछेंगे डू यू लव मी, हर रोज़ कही आई लव यू आई लव यू आई लव यू। चलिए, फेथ इन एक्शन, आजमाइश को तरबियत है, ज़िंदगी का एक मरहला समझना, गुनाहों से बचने की दुआएं मांगनी है, बच्चों की तरबियत में हया के पहलू को ख़ास अहमियत देनी है। अब यूसुफ की ज़िंदगी का तीसरा और दौर चला, रुकू नंबर 4:30-35, जेल खाने और यूसुफ। وقال نسوة في المدينة امراة العزيز تراود فتاها। अब सुनिए, अगर अजीज मिस्र अपनी बीवी को डांटता डिबड़ता तो ये अगला स्टेप ना आता, और शहर की औरतों में चर्चा होने लगा कि अजीज की बीवी अपने जवान गुलाम को अपना मतलब निकालने के लिए बहलाने फुसलाने में लगी रहती है, इसके दिल में यूसुफ की मोहब्बत बैठ गई, हमारे ख्याल में तो वो शरीफ गुमराही में है। किटी पार्टीज में ऐसी ही बातें होती हैं अक्सर, स्कैंडल्स अफेयर्स। इसने जब इनकी इस पुरफरेब गीबत का हाल सुना तो इन्हें बिलवा भेजा, इससे लगता है एक्सपर्ट थी, कोई शर्मिंदगी नहीं, दोस्तों में बातें फैल गईं, और कहेंगे अच्छा मैं एक पार्टी रखती हूँ, ठीक है, और इनके लिए एक मजलिस मुरत्तब की, और इनमें से हर एक को छुरी दी और कहा है यूसुफ इनके सामने चले आओ। इन औरतों ने जब देखा कि तो बहुत बुरा जाना, और अपने हाथ काट लिए और जुबानों से निकल गया कि खाश है लिल्ला, ये इंसान तो हरगिज नहीं, ये तो यकीनन तो बहुत ही बुजुर्ग फरिश्ता है। इस वक्त अजीज़ मिस्र की बीवी ने कहा, यही है जिनके बारे में तुम मुझे ताने दे रही थी, मैंने हर चंद इससे अपना मतलब हासिल करना चाह, कन्फेस कर रही है, भरी महफिल में जुर्म का इरतकाब करी, और शौहर को क्या कह रही थी, बिल्कुल इससे उलट, यानी बड़ी होशियार औरत थी ये मतलब, लेकिन ये बाल बाल बचा रहा, ऐसी बात आम औरतें नहीं कर सकती, और जो कुछ मैं इसे कह रही हूँ अगर ये ना करेगा तो यकीनन ये कैद कर दिया जाएगा, और बेशक ये बहुत ही बेइज्जत होगा, यानी अभी भी गिव अप नहीं किया उसने, दोबारा उससे वही मुतालबा। यूसुफ ने दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं, इससे तो मुझे जेल खाना बहुत पसंद है, अगर तूने इनका फन फरेब मुझसे दूर न किया तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊँगा और बिल्कुल नादानों से जा मिलूँगा। इसके रब ने इसकी दुआ कबूल कर ली और इन औरतों के दाव पेच इससे फेर दिए, यकीनन वो सुनने वाला जानने वाला है। फिर इन तमाम निशानियों के देख लेने के बाद भी इन्हें यही मसलहत मालूम हुई कि यूसुफ को कुछ मुद्दत के लिए कैद खाने में रखें। ऐसे हालात में मर्द क्या कहते हैं, वाह और यूसुफ कह रहे हैं कि नहीं, मुझे कैद कर दो। ये है तकवा, ये ईमान की ताकत है। आज भी फितनों के दौर में आपके बेटे, आपके शौहर, आपके भाई ऐसा ईमान रखेंगे तो अपनी जान इज्जत बचाएंगे, वरना नहीं। अमल का नुक्ता अपना ईमान मजबूत करना है, बाहया रहना है, अपने किरदार को मजबूत करना है, मजबूत कुव्वत इरादी रखनी है और मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी है। अब यूसुफ का जेल में क्या हुआ, आयत 36 से 42, पांच नंबर को, वह दखल माहु सिजन फतयान, कैद में भी दीन का मिशन जारी रहा। अभी देखिए कैद में जाकर क्या करते हैं, और इसमें ईमान के मुतालिक आयत 37, तबलीग का खूबसूरत अंदाज। इसके साथ ही दो और जवान भी जेल खाने में दाखिल हुए। इनमें से एक ने कहा, मैंने ख्वाब में अपने आप को शराब निचोड़ते देखा, और दूसरे ने कहा, मैंने आपको देखा है कि मैं अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूँ जिसे परिंदे खा रहे हैं। हमें आप इसकी ताबीर बतलाइए, हमें तो आप खूबियों वाले शख्स दिखाई देते हैं। यूसुफ ने कहा, तुम्हें जो खाना दिया जाता है इसके तुम्हारे पास पहुँचने से पहले ही मैं तुम्हें इसकी ताबीर बतला दूंगा। ये सब इस इल्म की बदौलत है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया है। मैंने इन लोगों का मजहब छोड़ दिया। ये नोट करें, जब बुराई छोड़ें फिर हिकमतें मिलती हैं। जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखरत के भी मुनकिर हैं, मैं अपने बाप दादों के दीन का पाबंद हूँ, यानी इब्राहिम, इसहाक और याकूब के दीन का। हमें हरगिज ये लायक नहीं कि हम अल्लाह ताला के साथ किसी को भी शरीक करें। हम पर और तमाम पर और लोगों पर अल्लाह का ये खास फजल है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं। ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, क्या कई एक परवरदिगार बेहतर हैं या एक अल्लाह जबरदस्त ताकतवर? जवाब दीजिए, एक अल्लाह बेहतर है। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है दिलाता है हजार सजदों से आदमी को निजात। इसके सिवा तुम जिनकी पूजा पाठ कर रहे हो वो सब नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने खुद ही घड़ लिए हैं। अल्लाह ने इनकी कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई, फरमा रवाई सिर्फ अल्लाह की है। इसका फरमान है कि तुम सब सिवाय इसके किसी और की इबादत ना करो, यही दीन दुरुस्त है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ऐ मेरे कैद खाने के रफीको, तुम दोनों में से एक तो बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हो जाएगा, लेकिन दूसरा सूली पर चढ़ाया जाएगा, और परिंदे इसका सर नोच नोच कर खाएंगे। तुम दोनों इसके बारे में तहकीक कर रहे थे, इस काम का फैसला कर दिया गया, और जिसकी निस्बत यूसुफ का गुमान था कि इन दोनों में से ये छूट जाएगा उससे कहा। नोट करिए, रिसोर्सेज यूज किए, अपने बादशाह से मेरा जिक्र भी कर देना। फिर इसे शैतान ने अपने बादशाह से जिक्र करना भुला दिया, यानी भूल शैतान की तरफ से, और यूसुफ ने कई साल कैद खाने में ही काटे। बेगुनाह यूसुफ कैद खाने में रहा। ये भी होता है जिंदगी में, ये सब चीजें उरूज के जीने हैं। अमल का नुक्ता, मुश्किल हालात में भी अल्लाह की बात करते रहना है, अपनी जगह पर रहते हुए दावत और दीन का काम जारी रखना है, तबलीग तब करनी है जब सुनने वाला तैयार हो। और अब यूसुफ का अखलाक खुलेगा, 43 से 49, रुकू नंबर 6, हजरत यूसुफ के कमाल अखलाक का एक नमूना। वकाल अल मलिक, बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि 7 मोटी ताजी फरबा गाय हैं जिनको 7 लागर दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 बालियां हैं हरी हरी और दूसरी 7 बिल्कुल खुश। ऐ दरबारियों, मेरे इस ख्वाब की ताबीर बतलाओ अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो। उन्होंने जवाब दिया, ये उड़ते उड़ाते परेशान ख्वाब हैं, और ऐसे शोरीदा परेशान ख्वाबों की ताबीर जानने वाले हम नहीं, यानी टाल दिया कि कोई ताबीर नहीं है। इन दो कैदियों में से जो रहा हुआ था इसे मुद्दत के बाद याद आ गया और कहने लगा, मैं तुम्हें इसकी ताबीर बतला दूंगा, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। ऐ यूसुफ, अब वो दरबारी यूसुफ के सामने है, ऐ यूसुफ, है बहुत बड़े सच्चे यूसुफ, आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बतलाइए कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 सब खुशे हैं और 7 ही दूसरे भी बिल्कुल खुश हैं, ताकि मैं वापस जाकर इन लोगों से कहूँ कि वो सब जान लें। यूसुफ ने जवाब दिया कि तुम 7 साल तक पैर दर पे लगातार हसवे आदत गल्ला बोया करना और फसल काट कर इसे बालियों समेत ही रहने देना सिवाय अपने खाने की थोड़ी सी मिकदार के, यानी ताबीर ही नहीं बताई तदबीर भी बताई कि उस कहत पे काबू कैसे पाना। इसके बाद 7 साल नहायत सख्त कहत के आएंगे, वो इस गल्ले को खा जाएंगे जो तुमने इनके लिए जखीरा रख छोड़ा था सिवाय इस थोड़े से के जो तुम रोक रखते हो। इसके बाद जो साल आएगा इसमें लोगों पर खूब बारिश बरसाई जाएगी और इसमें शीरा या अंगूर यानी अंगूर का जूस रस भी खूब निचोड़ेंगे। यानी तदबीर तारीफ सब दिए मुहसिन होते हैं कि नफी तुली बात नहीं की बल्कि एक्स्ट्रा की। आपके मेरे अमल की बात कि अपने अखलाक और किरदार से दिलों को जीतना है, अपनी सलाहियतों और फहम से दूसरों को फ़ायदा देना है। और अब आखिरी आयतें आयत 50 से 52। क़ैद से रहाई की शर्त बेगुनाही की गवाही बन गई। वक़ाल अल मलिक इन्नी अरा सब बकरात सिमान, और बादशाह ने कहा कि यूसुफ़ को मेरे पास लाओ। जब कासिद यूसुफ के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा अपने बादशाह के पास वापस जा और इससे पूछ कि इन औरतों का हकीकी वाक़या क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। इनके हीले को सही तौर पर जानने वाला मेरा परवरदिगार ही है। बादशाह ने पूछा है और तो इस वक्त का सही वाक़या क्या है जब तुम दाव फरेब करके यूसुफ को इसकी दिली मर्जी से बहकाना चाहती थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया माशाल्लाह यानी अल्लाह की बना हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं पाई। पूरे मजमे के सामने यूसुफ की बेगुनाही। फिर तो अजीज की बीवी भी बोल उठी कि अब तो सच्ची बात निथर आई, मैंने ही से वरगलाया था। सोचे शोहर के सामने क्या बोला, सहेलियों के सामने क्या बोला, और आज पूरे मजमे के सामने कह रही है यस आई वाज रॉन्ग। और यकीनन वो सच्चों में है। यूसुफ ने कहा ये इस वास्ते कि अजीज से मिसर जान ले कि मैंने इसकी पीठ पीछे खयानत नहीं की और ये भी कि अल्लाह दगाबाजों के हथकंडे चलने नहीं देता। क्या पता चला, अगर आप सच्चे हैं ना थोड़ा सा सब्र करें, अल्लाह आपकी सफाई सच्चाई उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश करेगा जैसे कि आप कर सकते थे। बहुत से अमल के नुक्तों में से एक अमल का नुक्ता इसी मामले का फैसला करने से पहले इसकी मुकम्मल छानबीन कर लेनी चाहिए। और ईमान की दो शाखें जो आप सबको बहुत अच्छी तरह पता है, रोज़ा सौम, जो अब इंशाल्लाह हम रखने वाले हैं, अल्लाह करेगा कि हमारे लिए ये आसान हो। और रोज़े हिजरत के बाद 18 महीने के बाद फ़र्ज हुए थे। कुतिब अलैकुम अस्सियाम के लफ्ज़ से पता चला बकरवान 83 में कि ये फ़र्ज है, नफिल नहीं। सहूलत के साथ जो भी करना है इसके मसाइल ज़रूर जानिए। हमारे कई ऐसे लेक्चर्स भी हैं, एक दो घंटे में पूरे रोज़े के बारे में जान लीजिए ताकि अच्छे रखिए। रमज़ान के रोज़े की फजीलत और बरकत समेटिए और ख़ास तौर पर ईमान और इख्तिसाब के साथ रोज़े रखने हैं और इस अजर अल्लाह ही आपको देगा। और 24th शाख है एतिकाफ़, इस पर बात हम दौरे कुरान के आखिरी दिनों में करने ही वाले हैं। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह आपका मेरा यहाँ बैठना भी एतिकाफ़ का ज़रिया बना दे और हम इससे बेहतरीन फ़ायदा उठा सकें। और यहाँ जब भी आते हैं नियत कर लिया करें एतिकाफ़, 2-3 घंटे का एतिकाफ़ भी इंशाल्लाह जहन्नम की आग से बचाएगा। एतिकाफ़ का जिक्र बकरा 125 में हज़रत इब्राहिम इस्माइल के किस्से में अनतखीरा बेती अल तौइफीन वल आकिफीन, तो आप सब क्या हैं आकिफात हैं। एतिकाफ़ के साथ इंशाल्लाह जहन्नम की आग से अल्लाह महफूज रखता है, नेकियां भी होती हैं और खैर मिलती हैं। एतिकाफ़ में जाएंगे तो क्या करेंगे, हर वो काम करेंगे जिससे आपका वक्त बेहतरीन हो। तो आखिर में आज का टॉपिक रिस्क, औलादों को वक्त देना, इससे एक शेर और एक दुआ के साथ पारा पूरा हुआ। परवास है दोनों की इसी एक फिजा में, फरगस का जहां और है शही का जहां और, यानी दोनों फिजा में उड़ते हैं। करगस किसको कहते हैं, वल्चर गिद्ध, और शाहीन तो वो है जिसको होना चाहिए। यानी रोजी रोटी के किस्सों में खो के गुजर जाओगे तो भी जिंदगी गुजर जाएगी, और बड़े मकसद के लिए जियोगे तो जिंदगी गुजरेगी। आज की दुआ रिश्ते तैयब के साथ और इल्म के साथ जुड़ी हुई है। اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اے اللہ بے شک میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتی ہوں اور پاکیزہ رزق اور ایسے عمل کا جو قبول کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے قبول کر لے۔ سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين۔